أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آيات نمبر 92 سے ہم دیکھیں گے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى، البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام. یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہود مدینہ کو ہی کہا جا رہا ہے. یہ بات ان کو یاد دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارے آباؤ اجداد کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تھے. کیا لے کر آئے تھے؟ بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ. میں نے آپ کو بتایا کہ بینات کون سی ہوتی ہیں، ایسی نشانی، ایسی واضح چیز کہ جو سامنے آ جائے نا تو انسان انکار نہ کر سکے. یعنی جو موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے تھے، تو 9 معجزے دکھائے تھے موسیٰ علیہ السلام نے. 2 تو بالکل شروع میں ہی موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے نا، جو عصا اور ید بیضا کا تھا، یعنی ہاتھ نکالتے تھے تو بالکل روشن ہوتا تھا، اور ایک عصا کا تو معجزہ، اس کے تو آپ نے کئی باتیں اس کے بارے میں پڑھ بھی دی ہیں. اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں 9 معجزوں کا ذکر ہے. 7 معجزے اور کون کون سے تھے وہ انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں پڑھ لیں گے ان کے بارے میں. بہر کیف بالکل واضح معجزے ان کو دکھائے گئے. اب ایک قوم اتنی واضح چیزیں دیکھ کے، ظاہر ہے ان کو تو یقین ہونا چاہیے یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں. ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے اور انہوں نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تم نے بچھڑے کو بنا لیا. اس کے بعد کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا. یہ بھی وہی صحرائے سینا کی بات ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ ساری بات. وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم. اب اللہ تعالیٰ ان مدینہ کی یہودیوں کو یہ بات کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے ہی یعنی تمہارے یہ جرائم چلے آ رہے ہیں. تمہارا تو یہ حال ہے، تم شروع سے ہی ایسے کرتے رہے ہو. اب جو تم ایک نبی کا انکار کر رہے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تمہاری تو ہسٹری ہی ایسے ہے. تم تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہی یہ حرکتیں تم نے شروع کر دی تھیں. اتنی واضح نشانیاں دیکھ کے نہیں تم مانے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا ماننا تھا؟ تب بھی موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے بے وفائی کی، دغا بازی کی، دھوکہ کیا، اور ان کو کیوں سنایا جا رہا ہے؟ جبکہ انہوں نے تو نہیں پوچھا تھا اتخذتم العجل، تم نے بچھڑے کو معبود بنایا. تم کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ ان کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کسی جگہ کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے، کسی جگہ پہ کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے، مگر حتی المقدور وہاں پہ تبلیغ کی جائے، اس کا انکار کیا جائے، اس سے نفرت کی جائے، تو ایسا شخص پھر سمجھ لیں کہ گویا وہاں پہ موجود نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہاں پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ہم اس سے نفرت بھی کریں، اس کا انکار بھی کریں، ہم اپنی طرف سے کوشش بھی کریں کہ کسی طرح سے یہ گناہ کا کام نہ ہو، تو ایسے ہی ہے جیسے ہم یہاں پہ موجود نہیں ہیں. اور جو شخص وہاں سے غائب ہے، مثلا یہاں پہ نہیں رہتا، کہیں دور رہتا ہے، سن پاکستان میں رہتا ہے، مگر اس برے کام کو دل سے چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، تو ایسا شخص گویا وہاں موجود ہے. اب حالانکہ وہ اتنے سمندر پار رہتا ہے، لیکن اگر وہ یہاں کے کسی کام کو، کسی برے کام کو، مثلا جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی، کسی کو یہاں پہ ایسی برائی ہو رہی ہے، اس کو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ تو بڑا اچھا کام ہے، یہ ایسا ہی ہونا چاہیے، تو سمجھ لیں کہ وہ بھی اسی میں شامل ہے. یہ لوگ بھی، یعنی ان کے کاموں کو حالانکہ صدیوں پہلے وہ گزر چکے ہیں، ہزاروں سال گزر گئے، لیکن وہ پھر بھی ان کے کاموں کو جسٹیفائی کرتے تھے، ان کے کاموں کو صحیح سمجھتے تھے. اس لیے ان کو بھی کہا گیا تم نے بچھڑے کو پوجا کی، کیونکہ یہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے ہمارے آباؤ اجداد نے غلط کیا، ان کو ایسے نہیں کرنا تھا، ان کی اس کام کو برا سمجھتے، برا نہیں سمجھا تھا. تم نے بنا لیا اس بچھڑے کو معبود، تو تم ظالم ہو، تم ہو ہی شرک کرنے والے، تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے نا. پھر اگلی آیت بھی آپ دیکھیے، یہ بھی وہی آیت ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کا اتنا حصہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جب ان سے پکا وعدہ لیا گیا. کس چیز کا وعدہ لیا گیا تھا بنی اسرائیل سے؟ وہ وعدہ کہ تورات کو تم عمل میں لے کر آؤ گے، اس کی پابندی کرو گے، اس کا عہد لیا گیا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے، ان سے کہا گیا تھا تم نے اس کو ماننا ہے، اس کے اوپر چلنا ہے، تو کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں، یہ تو بڑی مشکل ہے، یہ تو ایسے ہے جیسے ہم آج قرآن کے احکامات کو کرتے ہیں، بڑے مشکل ہیں، یہ تو آج تو ہو ہی نہیں سکتے. تو انہوں نے بھی کہا یہ بڑی مشکل ہے، ہم نہیں اس پہ چل سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر दूर पहाड़ उठा के इनके सरों पे खड़ा कर दिया और क्या कहा, खुदू पकड़ो इसको, मा आता ही ना कुंभी कुव्वत, जो भी तुम्हें दिया जाता है इसको मजबूती के साथ पकड़ो। तो इन्होंने अहद किया, फिर इन्होंने पक्का वादा किया, हाँ 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 हम पकड़ते हैं, हम पकड़ते हैं, हम ये करेंगे, यानी हम इसको निभाएंगे। ठीक है, तो ये मीसाक क्यों लिया गया, वादा क्यों लिया गया? मीसाक क्या है? कमिटमेंट है, एक पाबंदी का अहद है, एक पक्का वादा है। इसलिए कि जब इंसान वादा करता है ना तो फिर उसको निभाता है, समझ आई ना? कोई भी वादा जब इंसान कर लेता है तो वो वादा फिर उसको चलाता है। कि जैसे आप कह देते हैं ना कि अच्छा क्या करूं, मैंने करना तो नहीं था ये काम, लेकिन मैंने उसे वादा कर चुकी हूं, तो अब साहिरा जब वादा किया तो अब मुझे करना ही पड़ेगा। तो ये कमिटमेंट हो जाती है ना, जिस इंसान एक कमिटमेंट कर लेता है, तो जब तक कमिटमेंट ना हो इंसान अल्लाह के कलाम से उस तरह से फायदा नहीं उठा पाता। कमिटमेंट जरूरी होती है, इसीलिए उनसे कमिटमेंट ली गई, उनसे वादा लिया गया फरमा बरदारी का, इसको इम्प्लीमेंट करने का, जो भी इसमें हुक्म है। क्या हमसे भी कोई वादा लिया गया है? एक तो हर इंसान का अपने रब से एक खामोश अहद है, हर मुसलमान का। किस चीज का अहद है? बंदगी का, गुलामी का। जब आप नमाज में कितनी दफ़ा रिपीट करते हैं इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, तो इय्याक नअबुदु आप किस कमिटमेंट को कर रहे हैं? मैं सिर्फ तेरी इबादत करती हूँ अल्लाह, मैं सिर्फ तेरी इबादत करती हूँ। आप कमिट कर रहे हैं ना अल्लाह ताला के साथ। और इन्नल अहदा कैना मसूला, अहद जो है ना इनका सवाल किया जाएगा। ये जो आपने वादा किया अल्लाह के साथ कि मैं सिर्फ आपकी इबादत करती हूँ और करूंगी, मजारे है ना, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का माना आता है, अल्लाह मैं करूंगी और करती हूं, तो इस अहद के बारे में पूछा जाएगा। अहद इसीलिए होता है, जब इंसान अहद कर लेता है तो इंसान आजाद नहीं रहता, उसने गोया खुद को बांध लिया, आपने अपने आप को बांध लिया है अहद करके। जब आपने अहद किया वह बंदगी का, तब आप ये कहें मैं तो आजाद हूं, हम नहीं मानते, ये नहीं हुक्म मानते, वो नहीं मानते, अब आपके पास कोई चॉइस नहीं रह गई, क्योंकि आपने तो खुद अहद किया, आप अपनी जुबान से खुद बोलते हैं, तो फिर झूठ बोलते हैं क्या? कितनी दफा नमाज में झूठ बोलते हैं कि कह रहे हैं इय्याक नअबुदु और जिंदगी में गुलामी नजर ही नहीं आ रही, जिंदगी में यही नजर आ रहा है कि बिल्कुल आजाद है जिंदगी, ऐसे है कि हम किसी के अंडर नहीं है, मेरी मर्जी में जो मर्जी करूं मैं आजाद हूं। तो अगर आप मर्जी को अपना खुदा बनाए हुए हैं और आप अपनी मर्जी के गुलाम हैं, तो आप अल्लाह के गुलाम तो नहीं हुए, आप तो कह रहे हैं मैं सिर्फ अल्लाह की गुलाम। अगर सिर्फ का लफ्ज ना भी होता तो फिर भी कुछ बन सकता था, कोई रास्ता कोई निकल सकता था कि आप कह सकते हैं कि हाँ हमने कहा है कि हम अल्लाह के गुलाम हैं, लेकिन ये थोड़ी कहा है कि सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं, हम अल्लाह के भी हैं, अपनी मर्जी के भी गुलाम हैं, अपनी ख्वाहिश के भी गुलाम हैं। लेकिन जब आप कह देते हैं इया का, तो आपने सारे डोर्स क्लोज कर दिए, अब आपने कह दिया मैं सिर्फ अल्लाह के गुलाम हूँ, आपने एक अहद कर लिया अल्लाह ताला के साथ। तो एक तो अहद एलस तो हमने किया ही हुआ, ये अहद भी हम रोज करते हैं, तो उनके ऊपर तो अल्लाह ताला ने तूर को खड़ा कर दिया, हमारे ऊपर भी अल्लाह ताला मुसीबतों के पहाड़ खड़े करते हैं ताकि हम इस अहद को याद करें और वापस कमिट करें, वापस इस की तरफ आए, निभाएं इसको। लेकिन हमें फिर भी अक्सर याद नहीं रहता। खौफ का एलिमेंट क्यों डाला, क्यों फोर्स किया गया इनको कि किताब को मजबूत पकड़ लें, इनके ऊपर सरों पे पहाड़ क्यों खड़ा कर दिया गया? हम तो ये कहते हैं ना दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई किसी को जबर नहीं कर सकता, इट्स माय प्राइवेट मैटर, आप नहीं, मेरा पर्सनल मैटर है, आप नहीं कुछ कह सकते। इनके ऊपर तो पहाड़ को खड़ा कर दिया, पकड़ो इसको, तो इनसे तो जबरदस्ती की गई। क्या जबरदस्ती की जा सकती है शरीयत में? बाज लोग ना इसका इतना जबरदस्त जवाब देते हैं, कहते हैं ला इकराह फिद्दीन, ये उनको जरूर याद रहता है, उनको कुरान की कोई आयत भी ना याद दो तो वो कहते हैं सूरह आयतल कुर्सी के बाद ला इकराहा फिर दीन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो फिर आप हमें क्यों कहते हैं नमाज़ पढ़ो, आप हमें क्यों कहते हैं ये बुराई छोड़ दो, आप हमें क्यों कहते हैं कि ये गुनाह ना करो, आप हमें इन चीज़ों से क्यों रोकते हैं, दीन में तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इनको क्यों ज़बरदस्ती की गई? याद रखें इसका जवाब, ठीक है ये बात सही है ला इकराहा फिद्दीन, मगर उस आयत को लेकर आप कहीं और मुसलमान के ऊपर फिट नहीं कर सकते। वो किसके लिए? काफिर के लिए, कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, यानी आप किसी काफिर को पकड़ के ज़बरदस्ती उसको कहें मुसलमान हो वरना तुझे मार दूंगा, मुसलमान हो जा वरना मैं तुझे ये कर दूंगा, ये नहीं आप कर सकते। इसे याद रखिए, ये जो लोग कहते हैं ना कि ये हम मुसलमान जो हैं इस तरह तलवार के ज़ोर पे इस्लाम फैला या कहते हैं ज़बरदस्ती करते हैं, कोई मुसलमान अल्लाह की तरफ से उसको ये ऑर्डर है कि वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, किसी को आप मुसलमान बनाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। याद रखिए ये उसका पर्सनल चॉइस है कि अल्लाह ने उसको ये चॉइस दी है, चाहे तो इस्लाम ले आए चाहे तो ना लेकर आए। समझ आई? तो दीन को इख्तियार करने में आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ मगर कोई मुसलमान है तो उसके लिए नहीं है ला इकराहा फिद्दीन, फिर तुम्हें मानना पड़ेगा। फिर तुम ये नहीं कह सकते अब मैं नमाज ना पढ़ूँ, अब मैं रोज़ा ना रखूँ, अब मैं ये ना करूँ तो ठीक है, मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं कह सकता। ये अब यकीन करें इतनी इतनी बड़ी सज़ाएँ फुकहा ने आइम्मा कराम ने इसकी बताई हैं, इमाम अबू हनीफा ने तो बहुत हल्की सज़ा ये बताई कि जेल में डाल के रखा जाए इसको जो बेनमाजी है, जब तक वो तौबा ना करे, और बाज़ दूसरे फुकहा तो कहते हैं कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि कत्ल हल्की सज़ा है और आखरत की सज़ा तो बड़ी है। समझाइए, तो ये यानी जब दीन के अंदर आ जाए, ये ऐसा ही है जैसे मसलन है आप इस मुल्क में नहीं रहते, जब तक आप इस मुल्क की बॉर्डर से बाहर हैं तो इस मुल्क का कानून आप पे नहीं चलेगा। ठीक है आप जो मर्जी करें, वहां पे आप कनाडा में हैं कहीं और हैं, आप जो मर्जी करें, आप यहां के कानून को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई भी नहीं आपको कहेगा आप फॉलो करें, ठीक है। लेकिन जब आप इस मुल्क के बॉर्डर के अंदर आ गए, इस मुल्क की हदूद के अंदर आ गए, देन यू हैव टू फॉलो द लॉ। समझाइए, इसी तरह जब तक आप इस्लाम से बाहर हैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जाओ जो मर्जी करो, कोई नंगे फिर रहे हैं, कोई बुराइयां कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं, वो उनके ऊपर इस इस्लाम का लॉ नहीं लगता, ठीक है ना। लेकिन जब वो मुसलमान हो गए ना, अब नहीं आप ये कर सकते कि अब आप जो मर्जी करें, अब आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप बाहर होते तो फिर ठीक था, अपनी मर्जियां चलाते, अब आपको अल्लाह की मर्जी पर चलना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने आप को डिक्लेयर किया कि आप मुसलमान हैं, आप इस्लाम की हदूद के अंदर आए हैं। तो ये बात अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हीं बातों को लेकर फिर कहते हैं आप हमें क्यों कहते हैं, हम जो मर्जी करें, आपको इसका जवाब आना चाहिए। क्या तो ये बॉर्डर्स की बात से आपको समझ आ गई ना बात? कोई मुल्क ये नहीं इस चीज़ को अलाउ करेगा कि मेरे बॉर्डर्स के अंदर आ जाओ फिर आप अपनी मर्जियां चलाओ कि मैंने नहीं इसका कानून फॉलो करना, मैंने नहीं इस मुल्क में, मैंने यहीं पे इसके अंदर भी मैं हूँ इस मुल्क के अंदर, लेकिन मैं नहीं मानूंगी इसका कानून, ऐसा कोई नहीं कह सकता है ना। अगर कोई कहे तो फिर क्या होता है, उसको सज़ा मिलती है। इसी तरह इस्लाम के अंदर आ गए तो आप ये नहीं कह सकते मैं मर्जियां करूंगी, अब फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके ऊपर अब ये अपने इन्होंने कमिटमेंट की भी, ये उस वक्त के मुसलमान हैं। अब ये नहीं तुम कह सकते नहीं जी किताब के कवानीन तो बहुत सख्त हैं, इतने मुश्किल हैं, ये शरीयत तो बड़ी मुश्किल है, हम नहीं मान सकते। नहीं, अब उनके पर तूर खड़ा कर दिया गया, नहीं मानो, कुव्वत के साथ पकड़ो इसको। जैसे हमें कहा गया वापस मुँह भी हबलिल्लाहि जमीअन, यानी हमसे भी यह हद लिया गया, इसको मजबूती से थामो अल्लाह की रस्सी को, यानी इस कुरान को, इसको पढ़ो, इसको समझो, इसको सीखो, जो भी कुरान के हकूक हैं, पांच हकूक हैं ना कुरान पाक के, यही एतसाम है, यही है वातासिमु, पकड़ के रखो, यानी इसको, इसके ऊपर ईमान लाओ, इसको पढ़ो, इसको समझो, इसके ऊपर अमल करो और इसको औरों तक पहुँचाओ, ये पाँच हकूक हो गए। तो भी इनसे भी अहद लिया गया था कि इसको कुव्वत के साथ पकड़ो, मजबूती के साथ पकड़ो, ठीक है, यानी जिंदगी जो बदलने वाली किताब है, इस सब मजबूत ताल्लुक रखो और कमिटमेंट ले ली गई इनसे। अच्छा, ये कमिटमेंट आपसे इस क्लास में भी ली गई है एक ना, आपने भी तो एक कमिटमेंट की है ना, जब आपने रजिस्टर कराया तो आपने क्या कमिटमेंट की कि मैं ये क्लास पढ़ूंगी, सुनूंगी, समझूंगी, इसके लिए वक्त लगाऊंगी। तो अब देखें, आज जो आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये जो आप बंद के बैठे हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ जब आपने कमिटमेंट कर ली ना? तो ये कमिटमेंट इंसान को चलाती है। इसी तरह से अब ये जो हम आपसे टेस्ट लेते हैं ना, अब आप कहेंगे कि टेस्ट क्यों लिया जाता है। बाज लोग ये टेस्ट की वजह से इतना घबराते हैं कि वो कहते हैं हम इसलिए कमिट नहीं करते क्योंकि हमें टेस्ट नहीं देना अच्छा लगता, टेस्ट देना अच्छा नहीं लगता, तो हम ना टेस्ट देंगे ना हम ग्रुप एक्टिविटी करेंगे। तो बात यह है कि ये खुदू मा आतेना कुम बे कुव्वतिन, इसी का तरीका ये है कि आपसे टेस्ट लिया जाए। किस तरह से आप इसको मजबूती से पकड़ेंगे, ये मजबूती पाने का तरीका क्या होगा? टेस्ट है कुव्वत के लिए, ताकि ये मजबूत इल्म आपका बन जाए। रिवीजन भी किसके लिए है, ग्रुप एक्टिविटी किसके लिए, ताकि कुव्वत में के साथ आप इसको पकड़ सकें। देखें, एक है ना कि आपने बस सुन लिया, दैट्स इट। मगर देखें, अगर आपने सिर्फ सुना और उसके बाद आपको कुछ याद ही नहीं है, तो फिर आपने क्या लिया इसमें से? ले लो मजबूती के साथ, कुव्वत के साथ इसको लो। बहुत सारे लोग कहते हैं बड़ा अच्छा दर्स था, बड़ा वहां पे अच्छा मजा आया। अच्छा, फिर उनसे पूछा जाए, अच्छा क्या सुना था आपने वहां पे दर्स में? हाँ, ये याद नहीं है। तो जो याद ही नहीं है, तो फिर वो कैसा इल्म है? वो इल्म तो आपको कुछ फायदा नहीं देगा। हाँ, ऐसा इल्म तो कोई फायदा नहीं देगा। इसी वजह से आपको इस इल्म में मजबूत करने के लिए, ताकि आपको फायदा पहुंचे, आपसे ये टेस्ट लिए जाते हैं, आपसे ये ग्रुप एक्टिविटी की करवाई जाती है, ताकि आपको अचीवमेंट का एहसास हो, आप याद रखें उसके बाद भी, पुख्तगी आए आपके अंदर ना। कच्चा इल्म देखें नुकसानदेह होता है, फिर वक्त हाथ से चला जाएगा, फिर आप पछताएंगे क्या उस वक्त ही काश कर लेती। तो इसलिए ये आपके ही फायदे के लिए। तो इंशाल्लाह ताला ये चीजें आपको किताब के साथ मजबूत ताल्लुक बनाने में हेल्प करेंगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि खुदू मा आतैना कुम बे कुव्वतिन, ये उनके लिए भी हुक्म था, हमारे लिए भी हुक्म है। वस्माउ, और सुनो, गौर से सुनो। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कान लगा के अल्लाह की किताब की किसी आयत को सुनता है, तो पता है उसको क्या मिलता है? अब आप देखें, कान लगा के आप गौर से सुन रहे हैं इस वक्त बैठे हुए, एक आयत को भी सुनता है, तो आपके लिए खुशखबरी है। आप तो माशाल्लाह इतनी सारी आयात को सुन रहे हैं, अभी तक देखें आपकी सुबहान अल्लाह 93 आयात हो जाएंगी जो आपने गौर से सुनी है, और इससे पहले की भी साथ लगा लें तो 100 आयतें आप सुन चुके हैं। तो अल्लाह की किसी आयत को भी सुनने के लिए वो कान लगाता है ना, तो उसके लिए कसरत से बढ़ने वाली नेकी लिख ली जाती है। पता है कौन सी नेकी? कसरत से बढ़ने वाली, यानी वो एक नेकी नहीं है, वो नेकी है जो एक रहेगी नहीं, वो फैलती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, आपको पता भी नहीं है वो कितना बढ़ रही है। सुबहान अल्लाह, और किसी चीज के लिए ऐसी मतलब आपको ऐसा अजर मिल सकता है? तो गौर से सुने इस वक्त, जो आपने वक्त कुरान के लिए लगाया हुआ है ना, आपने कमिट किया हुआ है, तो इस वक्त में कोई और काम ना करें, गौर से कान लगा के सुने, तभी आपको ये अजर मिलेगा। बाकी काम धंधे होते रहेंगे, पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है इन काम धंधों के लिए, बर्तनों के लिए, सफाइयों के लिए, नहाने धोने के लिए। इस वक्त जो कुरान को आपने टाइम दे दिया है ना, ये अल्लाह का टाइम है, अल्लाह की किताब का टाइम है, ये आप डेडिकेट कर चुके हैं। डोनेट कर चुके हैं, इसमें और कोई काम ना कीजिए। हज़रत फुज़ैल बिन अय्याज़ बहुत बड़े आबिद जाहिद थे, फरमाया करते थे इल्म के पांच दर्जे। पहला दर्जा यह कि इंसान खामोश रहना सीखे। देखिए आप चुप रहेंगे तो सुनेंगे ना, अगर आप साथ साथ फ़ोन पे बात कर रहे हैं, साथ साथ आप किसी को टेक्स्ट कर रहे हैं, साथ साथ आपने चैटिंग के लिए एक विंडो खोली हुई है जो पैलटॉक या ऑनलाइन जो भी सुन रहे हैं, साथ साथ आप किसी को ना किसी को मैसेज भेजने में लगे हुए हैं, तो ये भी बोलना ही है ना। तो बोलने से इल्म नहीं आता, इल्म का पहला दर्जा ही है कि आप खामोश रहना सीखें। पहले आप अपनी ज़ुबान को बंद करें तब आप इल्म सीख सकेंगे। दूसरा दर्जा क्या है, तवज्जो से सुनना, ये सीखना पड़ेगा आपको, तवज्जो से सुनना। लिसनिंग की अपनी जो कैपेबिलिटी है ना इसको बढ़ाएं। ये हियरिंग होता है बस सुना और बस निकाल दिया, एक लिसन करना होता है जिसमें तवज्जो होती है। तीसरा दर्जा यह है कि जो कुछ सुने उसको याद रखें, ये इल्म का तीसरा दर्जा है। अब अगर आप कहें क्लास ख़त्म हो और उसके बाद आपको शाम को पूछें आज क्लास में क्या सुना है आपने, अब बहुत अच्छा सुना है लेकिन पता नहीं है कि क्या सुना, तो याद रखें उसको, इसीलिए आपको कहा जाता है सबक याद कीजिए, ये इल्म का अगला दर्जा है। चौथा दर्जा ये जो कुछ मालूम हो जाए उस पर अमल करें। और पांचवा दर्जा ये है कि जो इल्म हासिल हो उसको फैलाए, उसको दूसरों को भी बताइए, जो आप सुनते हैं उसको पहुंचाएं आगे, फैलाएं जितना फैला सकते, जिस मजलिस में बैठे उन्हीं चीज़ों को दोहरा दिया करें जो आपने सुन ली। ये इल्म के पांच दर्जे हैं, एक के बाद एक दर्जा आता है। तो पहले तो आप बातें अपनी कम करेंगे, 3 घंटे के लिए खामोश रहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पहले आप ये खामोश रहना सीखेंगे तो फिर ही आप गौर से सुन सकेंगे ना। अगर आप साथ साथ बोल रहे होंगे तो क्या सुनेंगे, और फिर जो सुन लें फिर उसको दिमाग में बिठाने की कोशिश करें, रिवाइज करें। रिवाइज करेंगे तो इंशाल्लाह याद रहेगा। कोशिश करें कि आपने इसको हफ्ते में हर दिन 2 से 3 दफ़ा रिवाइज करना है, सिर्फ तर्जुमे को, ठीक है। फिर इंशाल्लाह जब आपको याद रहेगा तो फिर अमल में भी याद आ जाएगा, फिर जब कुछ काम करने लगेंगे तो लाजमी तौर पे आपके जहन में आएगा हाँ ये बात हमने पढ़ी थी, इस तरह फिर अमल में भी आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। और फिर जाहिर है जब आपने एक चीज़ रोज़ाना रोज़ाना रिवाइज़ की है तो आपको फैलाने में आसानी होगी, क्योंकि आपकी ज़ुबान पर फ़ौरन जारी हो जाएगी वही बात। तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि सुनो सुनो सुनो। अच्छा हम तो कहते हैं कि लोगों को कि भाई और कुछ भी नहीं कर सकते, इल्म के इतने मरहले नहीं भी तय कर सकते याद करने के, कुछ तो सुन ही लो भाई, आके थोड़ी देर अपना वक्त लगाओ सुनने में ही। लेकिन बाज़ लोगों के लिए सुनना भी बोझल हो जाता है, वो कहते हैं सुन भी नहीं सकते, क्यों? इसलिए कि दिलों पे गफलत के पर्दे पड़े हुए, गुनाहों के पर्दे पड़े हुए, दुनिया की मोहब्बत के पर्दे इतने पड़े हुए हैं कि वो पर्दे ऐसे इंसान के दिल को कवर कर लेते हैं वो सुनना भी नहीं चाहता। और याद रखिए सूरतुल मुल्क में अल्लाह ताला ने फरमाया जहन्नमी उस दिन कहेंगे, चीखें मार मार के कहेंगे, जब वो जहन्नम की आग में जल रहे होंगे ना तो उनकी चीखों पुकार होगी, और चीख चीख के क्या कह रहे होंगे, लौ कुन्ना नस्माउ नाकिलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, काश के अगर हम सुन लेते और हम समझ जाते तो हम आज आग वालों में से ना होते, इस भड़कती हुई आग में हम आज पड़े हुए ना होते अगर हम सुन लेते। देखें वो भी क्या कह रहे हैं, काश के हम सुन लेते, अगर हम उस वक्त सुन लेते ना दुनिया में तो आज हमारा ये अंजाम ना होता। क्योंकि जब इंसान सुनता है तो जाहिर है कहीं ना कहीं दिल में तो जाके बात लगती है ना, सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे। तो मेरा तो ईमान ये है कि सुन सुन के सुन सुन के एक दिन पत्थर के अंदर भी पानी टपकता रहे बहुत अरसे तक भी तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। हाँ ये अलग बात है कि जैसे हमने पढ़ा कि बाज दिल पत्थरों से भी सख्त हो जाते हैं, अगर दिल इतना सख्त हो गया ना फिर नहीं उसमें सुराख होने का, फिर सुन सुन के सुन्नी हो जाएंगे, फिर नहीं फिर बेहिस हो जाएंगे। लेकिन अगर वाकई दिल दिल ही है, पत्थर से ज्यादा सख्त नहीं हुआ, तो इंशाअल्लाह ताला सुनने से फर्क पड़ेगा। और यहां से ये भी पता चलता है कि सुनना जरूरी है। अल्लाह की किताब का सिर्फ खुद से पढ़ लेना काफी नहीं है। बाज लोग कहते हैं हम घर में खुद ही पढ़ते रहते हैं, बस हमें नहीं जरूरत है कि हम आके सुने। नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया वस्माऊ, आप किसी से सुनते हैं ना उसका अलग असर होता है। आप खुद भी पढ़ें लेकिन सुने जरूर किसी ना किसी से। तो वो क्या कहते थे, वो कहते थे कालू समेना व असईना, उन्होंने कहा हमने सुन तो लिया है लेकिन हमने मानना नहीं है, हम नहीं मानते नाफरमानी की हमने। अल्लाह अकबर, ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है कि कोई लोग सुने और दिल में उन्होंने ठान लियो कि हमने नहीं मानना। यानी वो नहीं जिसको कहते हैं सुनी अनसुनी, या एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, वो वाली सिचुएशन। यानी कान में गई तो थी बात लेकिन दूसरे से निकल भी गई, याद ही नहीं रखी। इसलिए क्योंकि हमने क्या करना याद रख के, हमने अमल थोड़ी करना, हमने तो सोच लिया कि हमने नहीं मानना क्या। और ऐसे कहते थे कि समय ना वा सही ना, ऐसे अल्फाज को बल देके कहते थे कि अगर कोई इतराज करे भी कि तुमने ये क्या कहा कि हमने सुना और हम नहीं मानते, तो कहेंगे नहीं हमने तो नहीं ऐसा कहा, हम तो ये कह रहे हैं हमने सुना और हमने मान लिया। तो उन्होंने ये उस वक्त कहा था जिस वक्त मूसा अलैहि सलाम की बात हो रही है। अल्लाह ताला ने बता दिया कि यही सलूक 2000 साल बाद ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर रहे हैं। इन्होंने सुन लिया, इनको पता है, मानते नहीं। ऐसे लोग फिर कहाँ हिदायत पाएंगे जिन्होंने अपने अंदर ही ये फैसला कर लिया हो कि जो मर्जी हमें सुनाते रहो, हमने नहीं मानना। हम भी सोचें, हम कुरान की क्लास में बैठे तो हैं, सुन तो रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने दिल ही दिल में ये फैसला कर चुकी हूँ कि ठीक है ये जो मर्जी कहती रहें, सुनाती रहें, बताती रहें, मैंने मानना नहीं है, मैं नहीं मानूंगी। हाँ मानूंगी, तब मान लूंगी जब ये मेरा काम हो जाए, जब हालात ठीक हो जाएंगे, जब मेरे ये हो जाएगा, जब शादी हो जाएगी, जब मेरी जॉब लग जाएगी, जब फलानी, तब मानूंगी। अभी नहीं मैंने मानना, मैं मानने के लिए थोड़ी सुन रही हूँ, मैंने करना तो वही है जो मेरा अपनी मर्जी है। ठीक है कुरान पढ़ लेती हूँ, एक है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, के फिर रोज रोज कहते रहते हैं भी कुरान भी नहीं पढ़ा, कुरान भी नहीं पढ़ा, दिल में अंदर भी इंसान के गिल्ट रहता है। तो वो ठीक है मैं सुन तो रही हूँ, क्लास भी ले लूंगी, सर्टिफिकेट भी मुझे मिल जाएगा, लेकिन मानना वानना मैंने कोई नहीं है भाई। ये नहीं हम आजकल कर सकते, हम इतने भी नहीं एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हम। अल्लाह अकबर, तो रवैये आज भी वही हैं। याद रखें, अगर किताब सुन के भी सोचने का आपका अंदाज ना बदले, अमल ना बदले, तो दिल बहुत सख्त हो जाते हैं, बहुत सख्त हो जाते हैं, फिर कोई चीज़ नहीं इंसान को बदल सकती। क्योंकि ये अल्लाह की किताब ही है जो इंसान की जिंदगियों को बदल देती है, दिलों को बदल देती है, अमल को बदल देती है, आपकी वे ऑफ थिंकिंग ही बदल जाता है, आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि किताब तो मैं सुनती जा रही हूँ और रत्ती बराबर, ठीक है ये नहीं मैं कहती आप कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क जरूर आना चाहिए। अगर बिल्कुल फर्क नहीं आ रहा, कोई भी चेंज नहीं आ रही, समझने दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गया। तो वो कहते थे समय ना वा सही ना, हमने सुना हमने हमने मानना नहीं है। वह उशरी बूफी कुलू बिहिम इजला बी कुफरीहिम, और पिला दिए गए अपने दिलों में बछड़े की मोहब्बत अपने कुफर की वजह से। इनके इस कुफर, कौन सी चीज को कुफर कहा गया, उन्होंने कौन सा कुफर किया था? कुफर तो उनका था, ये जो बछड़े को पूजा करना ये उनका कुफर ही था ना, और उनका ये कहना भी कुफर है कि समय ना वो आसाई ना, हमने सुना हमने नहीं मानना। अल्लाह की बात को अल्लाह के किसी हुक्म के ऊपर ये कहना ये कुफर है। अल्लाह की किताब के साथ ऐसा खेल करना, यह सुन के और फिर अपनी शरारतें करना कि हमने मानना नहीं है, ये कुफर है, ये इसकी नाकदरी है। और इनका ये कुफर भी कि जो इन्होंने बछड़े को माबूद बना दिए, इनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई। तो ये बछड़े की मोहब्बत सिर्फ उनके दिलों में नहीं थी। हर दौर में याद रखें, किसी न किसी के लिए कोई बछड़ा होता है जिसकी मोहब्बत अंदर तक खून के आखिरी कतरे तक जज़्ब हो चुकी होती है, और उस मोहब्बत की वजह से इंसान हक की तरफ नहीं आता। कहते हैं मुंह से हम ईमान वाले हैं, हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, दिलों में देखो तो क्या भरा हुआ है। दिलों में किसी बछड़े की मोहब्बत है जो भरी हुई है, पता है आपको। हर दौर में ऐसा होता है, ये उनके लिए ही नहीं था, उनके लिए तो था, उन्होंने के लिए बछड़ा मुकद्दस था, उन्होंने बछड़े को माबूद बनाया, ये हमें सब पता है। फिजिकली तो उनके लिए ये सारी चीजें हमें नजर आई हैं, लेकिन मैं ये आपको बता रही हूं, आज सामने सोने का बछड़ा नहीं रखा हुआ, लेकिन दिलों के अंदर बछड़े हैं जिनको हम सजदे करते हैं, जिनके आगे हम झुके हुए हैं, अल्लाह को छोड़ के हम उनकी पूजा करते हैं, और जिनकी मोहब्बत हमारे अंदर इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि अल्लाह की मोहब्बत से भी बढ़ के उनकी मोहब्बत है, कि उनकी खातिर हम कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह का कोई हुक्म टूटे जुड़े जो मर्जी हो, हमने उस मोहब्बत की खातिर, इस बछड़े की मोहब्बत की खातिर हमने अल्लाह के हर हुक्म को पीछे कर देना। कौन कौन से बछड़े हैं आजकल, कुछ पता है आपको? कौन कौन से बछड़े हैं आपके मुआशरे में? तलाश करें जरा ऐसे बछड़ों को, ये भी आपका होमवर्क है। आपके माशरे में कौन कौन से बछड़े हैं? अना भी एक बछड़ा है, पता है, जिसकी मोहब्बत अना, मेरी, मैं क्यों किसी और की सुनूं, मैं अपनी करूंगी, मैं क्यों छोटी हो जाऊं, मैंने उसकी मान ली तो क्या होगा, मैं, मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिश, ये मैं जो है ना, ये एक बछड़ा है। इस मैं की मोहब्बत इतनी है, इस मैं को नीचा नहीं करना चाहते हम। इसी तरह माल भी एक बछड़ा है। इस माल के लिए इंसान अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने में आर नहीं समझता, इसी माल की पूजा करता है, इसी माल के आगे झुकता है, इसी को सजदे देता है, यही उसका खुदा बन जाता है। किसी के लिए शौहर की जात ऐसी हो जाती है कि उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना जिंदगी का मकसद बन जाता है। शौहर की जात इतनी बड़ी हो जाती है कि इंसान अल्लाह के हुक्म तोड़ने को भी तैयार हो जाता है, भी एक बछड़ा बन जाता। इसी तरह बाज लोगों के लिए पता है क्या बछड़ा होता है? ये लहव व लाब की मजलिसें जो हैं, जिसमें बेहुदा गोइयां, जिसमें फजूल तमाशे, ये मजलिसें, ये महफिलें उनको इतनी दिल को भाती हैं, इस बछड़े की मोहब्बत इनके दिलों में पिला दी गई, दिल के अंदर खुब गई भी है, दिल में जज़्ब हो गई है, इतनी प्यारी होती हैं उनको ये मजलिसें, इन मजलिसों को नहीं छोड़ सकते। ये मजलिसें गोया उनके इला बन जाती हैं। अल्लाह का कुरान छोड़ना पड़े छोड़ दो, अल्लाह के जिक्र की मजलिस छोड़नी पड़े छोड़ दो, ये मजलिसें नहीं हम छोड़ सकते, इनकी मोहब्बत ऐसे पिलाई गई है दिलों में। फिर बाज लोगों के लिए घर की मोहब्बत, ये गोया पिला दी गई होती है। घर इजल है उनके लिए, वो बछड़ा है जो अल्लाह के मुकाबले में है, उसको हमने रब का मकाम दे रखा है। इन्हीं घरों के लिए हम जीते हैं और इन्हीं के लिए मरते हैं, तो हर एक के लिए एक बछड़ा है। किसी ने किसी को बछड़ा बनाया हुआ है, किसी ने किसी को, और उस बछड़े की मोहब्बत में चूर है। हम भी देखें, हमने तो नहीं किसी को बछड़ा बनाया, क्या हम अल्लाह को ही माबूद बनाए हुए हैं, या दिल ही दिल में कई बछड़े हैं जिनकी हम पूजा कर रहे हैं? अल्लाह माफ कर। جب وہ ایسے تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے بھی, کیونکہ وہ بچڑے کی اتنی زیادہ اس کا تقدس کا جذبہ ان کو اتنا زیادہ تھا, اتنی ان کے پیچھے وہ ایسے اس کے دیوانے تھے, اللہ تعالیٰ نے پھر اسی محبت کو ان کے دلوں میں ڈال دیا. ٹھیک ہے, پھر تم اسی کے ہو کے رہنا چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے, یہی محبت تمہارے دلوں کا روک بن گئی, یہی تمہارے اندر پلا دی گئی, پھر اللہ نے اسی کے حوالے کر دیا. بہت زیادہ ہمارے لیے سوچنے والی آیات ہے یہ. قل کہہ دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم, آئے ہائے کہہ دیں آپ اے نبی کتنا برا حکم دیتا ہے تم کو ساتھ اس کے ایمان تمہارا, یعنی کتنے یعنی برا حکم دیتا ہے تمہارا ایمان کہ کفر کا حکم دے رہا ہے. یہ تبصرہ ہو رہا ہے, یہ جب وہ کہتے تھے نا ہم مومن ہیں, ہم بھی تورات کو مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں زبور کو, ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں, اب جھگڑا کس بات کا, تم کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو تو ہم مانتے, تو ایمان والے تو ہم بھی ہیں, ہم آخر ایک شریعت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے, آخر آپ بھی تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے, تو ہم ان کو نبی مان رہے ہیں بھائی, ہم بھی ایمان والے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ تم ایمان والے نہیں ہو, مسئلہ کیا ہے بھائی, توحید پہ ہم ہیں, قیامت کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں, سب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنا برا ہے تمہارا ایمان جو تم سے کفر کراتا ہے, بچھڑے کی محبت تمہارے اس میں تم مبتلا ہوئے ہو, تو یہ کس سے کہہ دیں, کس سے کہہ دیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود مدینہ سے تو کہیں گے, لیکن ہر وہ شخص جس کے دل میں بچھڑے کی محبت ہے, کسی بچھڑے کی محبت ہے, یا وہ کہتا ہے سمعنا وعصینا, کتاب کو سن کے بھی کہتا ہے میں نے سن تو لیا ماننا میں نے نہیں ہے, تو تم تو کہتے ہو کہ تم ایمان والے ہو, تم تو کہتے ہو میرا نام فاطمہ ہے, میرا نام عائشہ ہے, میرا نام یہ ہے, میں ایمان والی ہوں, آپ کیسے ہمیں ایسے کہہ سکتے ہیں, لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو, تو تمہارا ایمان تمہیں یہی حکم دیتا ہے کہ تم یہ کام کرو, کہ تمہارے دل کے اندر اس طرح سے کوئی بچھڑا بساؤ, تمہارا ایمان تمہیں یہی حکم دیتا ہے کہ تم سمینا واسینا کہو, یہ ہے تمہارا ایمان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہہ دیں کتنا برا حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان, اگر تم مومن ہو, اگر تم واقعی مومن ہو تو کیا تم یہ کہہ سکتے ہو اس طرح سے اللہ کی کتاب کے لیے, کیا یہی طرز عمل ہونا چاہیے ایمان والے کا, تم دعویٰ تو کر رہے ہو کہ میں ایمان والے ہوں مگر تمہارا عمل کیا کہتا ہے, اور تمہارے دل میں کس کی محبت بسی ہوئی ہے وہ تو دکھاؤ, وہ تو ایمان سے بالکل میچ نہیں کرتی. دیکھیں عمل سے ایمان کو جوڑا جا رہا ہے, تم کہتے ہو ہم ایمان والے, ہم ایمان والے, اس کے بعد تم کہتے ہم نے ماننا ہی نہیں, کیا ایسا حکم دے رہا ہے تمہارا ایمان. اس کا مطلب یہاں سے اس آیت سے صاف طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان اگر بغیر عمل کے ہے تو وہ ایسا ایمان ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کون سا ایمان وہ ہوتا ہے جو انسان کو برائی کا حکم دے, تم کہتے ہیں ایمان والے ایمان والے, ایمان ایمان کی رٹ لگائی ہوئی ہے, کون سا دنیا کا ایمان ایسا ہوتا ہے جو انسان کو یہ ایسا کر دے کہ وہ اللہ کی کتاب کو سنے بھی اور وہ مانے ہی نہ. اصول تو یہ ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے نا, تو تمہارا یہ کیسا ایمان ہے جو تم سے یہ کام کروا رہا ہے, تمہارا پھل دیکھو کہ کیا ہے, آؤٹ کم کیا ہے, اس کا انجام کیا ہے. اللہ اکبر. قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ, کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے لیے دار الآخرہ عند اللہ, اللہ کے پاس خالصۃ, خالص تمہارے لیے ہی ہے, من دون الناس لوگوں کے سوا, یعنی دار الآخرہ کا مطلب کیا جنت, ٹھیک ہے, دار الآخرہ آخرت کا گھر کا مطلب کیا ہے, یہاں پہ مراد کیا ہے بریکٹ میں لکھ لیں جنت ہے, یعنی اگر تم یہ کہتے ہو, اس کا مطلب ہے اگر تمہارے لیے ہے, کہتے ہو نہیں یہاں پہ آیا, کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے لیے یہ جنت اللہ کے پاس, خالص، اب دارو الاخرہ کی جگہ آپ جنت کا لفظ بولیں تو آپ کو بات پوری طرح سمجھ آ جائے گی. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے تو ان کے دعوے کا جواب دیا جا رہا ہے. وہ کیا دعویٰ کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے دیکھیں جی ہم تو چوزن ونز ہیں، پیغمبر ہمارے پاس آئے، کتابیں ہمارے پاس آئیں، ہم اس وقت کی امت مسلمہ ہیں، تو جنت تو ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے، ریزرو ہے ہمارے لیے. تو اب کسی اور نے نہیں جنت میں جانا سوائے ہمارے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا جواب اپنے نبی کو بتایا کہ آپ اے نبی ان سے کہہ دیں اگر جنت تمہارے لیے ہی ہے نا، خالص تمہارے لیے، خالص پیورلی تمہارے لیے، من دون الناس لوگوں کے سوا، یعنی اور کسی کے لیے نہیں ہے، صرف تمہارے لیے، تو کیا کرو؟ فتمنوا الموت، تو ذرا موت کی تمنا تو کرو. پھر تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو، ادھر دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ پھر جنت میں ہی جاؤ سیدھے، کیونکہ دیکھیں موت کے بغیر تو جنت مل نہیں سکتی، تو پھر ذرا تمنا کرو نا موت کی. تمہیں تو دنیا میں، اس دنیا کے جھمبیلوں میں، اس دنیا کی پریشانیوں میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں پھر بس سیدھے ڈائریکٹ جنت میں ہی چلے جانا چاہیے. اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اگر یہ اس وقت موت کی تمنا کرتے نا تو ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ رہتا، ایک بھی نہ باقی رہتا. تو ان کے اس بات کو ان کو کہا جا رہا ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے پیارے بیٹے ہیں اور ہم اس کے اتنے چہیتے ہیں نا. بیٹے سے مطلب کیا ہے؟ ہم اتنے اس کے لاڈلے ہیں، اس کے چہیتے ہیں. بالکل ایسے ہی آج امت مسلمہ کا بھی تو حال ہے نا. امت مسلمہ آج اسی مقام پہ ہے، کرنا ورنہ کچھ نہیں، مگر یہ ضرور کہنا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں نا، تو جنت میں تو ہم نہیں جانا، جو بھی ہیں مگر تیرے امتی ہیں. یہ ان کے کام تھے، یہود کے، ان کے یہ کہنے تھے، آج ہمارا بھی یہی کہنا. باقی سارے تو جائیں گے جہنم میں اور ہم ہیں صرف جن کے لیے ریزرو ہے جنت. تو ہم بھی آج اپنے گریبانوں میں ذرا جھانکیں، اگر واقعی جنت ہمارے لیے ریزرو ہے تو ذرا پھر موت مانگو. اب یہ یہاں پہ مطلب نہیں ہے کہ موت مانگنا اچھی بات ہے تو ہم سب کو اپنے لیے موت مانگنی، نہیں، یہ ان کی اس دعوے کا جواب ہے، اور جو جو ایسا سمجھتا ہے اس کا جواب ہے. تمنا کرو نا پھر موت کی، اگر تم سچے ہو، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر تم موت کی تمنا کرو، پھر تو تم چاہو کہ تم ہماری جاؤ تو اچھا ہے، جلدی مریں گے، جلدی، اتنی پیاری جنت وہاں پہ رکھی ہوئی ہمارے لیے، ڈائریکٹ جائیں فوراً. ہم یہاں بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ دنیا میں مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، کبھی کچھ ہے، جاؤ پھر وہاں. اللہ اکبر. لیکن کیا ہے؟ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، لیکن وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں مانگیں گے اپنے لیے موت. کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے آگے بھیجا، ان کے اعمال جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں، جو برے اعمال ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا کام کر چکے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، بلکہ انسان اپنے آپ کے اوپر خود گواہ ہے، خود جانتا ہے، خود اس کو پتہ ہے کتنے پانی میں ہوں. یہ وہ اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے کہ نہیں 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 بس صحیح ہے صحیح ہے. آپ دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، آج مسلمان سب سے زیادہ جو اس خوش فہمی میں مبتلا ہے نا، وہ کون ہے؟ جو جتنے زیادہ دین سے دور ہے اتنی ہی زیادہ ان کو یہ خوش فہمی ہے کہ بس ہم جنت میں جائیں گے. جو جتنا دین سمجھنے والا ہے نا، وہ تو بیچارہ ہر وقت ڈرتا ہی رہتا ہے، اس کو تو ہر ہر قدم کے اوپر کوئی بات ہو جائے تو اس کو یہی لگتا ہے جہنم کی آگ نظر آنے لگتی ہے آگے. سچ بات ہے یہ، اس کو تو لگتا ہے وطنی جہنم کی آگ شاید میرے لیے ہی بنی ہے، کب میرا عمل صحیح ہوگا. اور جو جتنا دین سے دور ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم نے کیا ہی کیا ہے، ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، ہم تو صحیح ہیں، बस यहाँ पे भी हमारा अच्छा है और वहां पे भी जन्नत हमारे लिए, तो फिर तमन्ना क्यों नहीं करते मौत की? फिर जाओ ना, जाओ जन्नत में। तमन्ना नहीं करेंगे इसलिए कि अंदर कहीं उनको ये पता है, खूब अच्छी तरह पता है कि ऐसा नहीं है। पता है कि मैं शरीयत पे अमल नहीं करती हूँ, पता है कि मैंने अल्लाह के हुक्मों का मजाक बना रखा है, ये पता है इंसान को। तो वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को खूब जानता है, अल्लाह को खूब पता है जो ऐसे जालिम है। जालिम कौन है यहाँ पे? जिन्होंने अपने आगे जो ये कारनामे करके भेजे हुए हैं, जुल्म किया ना अपनी जानों के ऊपर गुनाह कर करके, अल्लाह को ऐसे जालिमों का खूब पता है, ये कभी भी नहीं मांगेंगे अपने लिए। याद रखें यहाँ पे ये मुराद नहीं है कि इंसान मौत की तमन्ना करने लगे, मौत को चाहने लगे तो फिर अच्छी बात है। यहाँ पे ये है कि मौत को उनके लिए कहा गया कि आप तमन्ना करो, ताकि इनका एक जो ये इन्होंने एक भरम रखा हुआ है, या एक अपने आप को एक सेल्फ डिसेप्शन में है कि ये जन्नत में जाएंगे, तो फिर मौत की तमन्ना करो। वरना वैसे ये नहीं है कि आप आम हालात में यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, कुरान तो कह रहा है फतमन्ना वुल मौत, तो हम तुम मौत की तमन्ना करो, तो अब मैं मौत की तमन्ना करना शुरू। देखिए कुरान ये कह रहा है, देख लिया ना आपने, जब भी किसी चीज़ को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप करेंगे कोट कहीं पे भी, तो क्या से क्या मतलब बन सकता है? आपको पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसको देखना होता है कि इसका क्या मतलब है। मौत की तमन्ना करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बल्कि एक रिवायत में ये आता है कि अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ फरमाया और हमारे दिलों को नरम किया। तो इतना ऐसा वाज़ क्या होता है? मैंने आपको एक दफ़ा बताया था ना, मौइज़तन में बताया था। अब याद रखना है आपने, वाज़ ऐसी नसीहत जो दिल को नरम कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बातें बताई जिससे दिल नरम हो गए, और जैसे कई लोग ऐसा वाज़ देते ना, इंसान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो साथ बिन अबी वक़ास जो थे, तो वो उनका भी ये हाल हो गया, वाज़ सुन के इतना रोए और कहने लगे काश मैं तो मारी जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ साद मेरे सामने होके तुम मौत की तमन्ना करते हो, यानी मेरे पास होके। फिर फरमाया, साद अगर तुम जन्नत के लिए पैदा किए गए हो और तुम्हारी उम्र लंबी है और अमल अच्छे हैं, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी इससे हदीस से पता चला मौत की तमन्ना करना किसी तरह भी जायज नहीं है, चाहे इंसान को कोई माली जिस्मानी कोई भी तकलीफ पहुंचे। तो तब भी इंसान मौत की तमन्ना नहीं कर सकता। उन्होंने तो किस लिए की थी? अल्लाह के अजाब के खौफ से ना, अल्लाह के अजाबों के खौफ से। तो कभी इंसान के आमद के जिक्र पड़ता है, इस तरह पड़ता है, तो इंसान फिर कहता है अल्लाह मैं तो बस खत्म हो जाऊं। तो आप तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जिंदगी जो है ना, असल में हमने इसकी कदर नहीं जानी। ये जिंदगी इतनी कीमती है, इतनी कीमती है, काश मैं आपको इसकी वैल्यू, इसकी कितनी ये प्रेशियस है ना, ये बता सकूं। इतनी बड़ी ये नेमत है, इतनी कीमती ये चीज़ है, इसलिए कि इसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी इटर्नल लाइफ, हमारी हमेशा 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 की जिंदगी जो कभी ख़त्म नहीं होनी, वो सारी की सारी इस पे डिपेंड करती है। तो ये तो फिर बहुत ही हमारे लिए कीमती हुई ना, क्योंकि इसके ऊपर सारी हमारी वहाँ की जिंदगी बेस करेगी। हमने वहां पे कहाँ जाना है, जन्नत में या जहन्नम में, वो सब इस यहाँ की दुनिया की जिंदगी पे बेस करता है। तो इसका तो एक एक मिनट कीमती है, इसकी नाकदरी इंसान कैसे कर सकता है? इसमें किए हुए एक अमल से जन्नत कमाई जा सकती है, जहन्नम से बचा जा सकता है। आप सोचें, इसमें बहाया हुआ एक आंसू जहन्नम के समंदरों को बुझा सकता है, इसमें रखा हुआ एक रोजा आपको जहन्नम से 70 साल की मसाफत से दूर कर सकता है, इसमें पड़ी हुई एक नमाज आपके गुनाहों को धो सकती है, इसमें पड़ा हुआ एक दरूद शरीफ आपके दर्जे बुलंद कर सकता है, इसमें कहीं भी एक सुभान अल्लाह आपके मीजान को भर सकती। और ये जिंदगी एक दफा खत्म हो गई ना, एक दफा खत्म हो गई तो आप आंसुओं के समंदर भी बहा लेंगे तो उससे आपका एक गुनाह भी माफ नहीं होगा। आप यहां पे एक अस्तगफार करते हैं, अल्लाह मेरी तौबा मुझे माफ कर दे, जब दिल से कहते हैं अल्लाह ताला आपकी तौबा कबूल कर लेते हैं। आप ऐसे हो जाते हैं जैसे आपने वो गुनाह किया ही नहीं। और वहां पे पता है अल्लाह अकबर हदीस में आता है जहन्नमी इतने आंसू बहाएंगे, इतने आंसू बहाएंगे कि उनके आंसुओं में कश्तियां चल जाएं, लेकिन एक भी गुनाह माफ नहीं होगा। अल्लाह ताला उन पे रहम नहीं करेंगे, उन पे तरस नहीं खाया जाएगा। यहाँ पे आपकी एक इस्तग़फ़ार के ऊपर अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम फरमाते हैं, कहते हैं इतने गुनाह ले आओ जितने आसमान तक तुम्हारे गुनाह भर जाए, जमीन सारी भर जाए, तब भी तुम मुझसे तौबा करोगे तो मैं माफ कर दूंगा। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपको इस लाइफ में मिली है, ओनली इन दिस लाइफ। ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती बाद में। इधर मौत का झटका लगा, उधर ये सब डोर्स क्लोज हो गए, तौबा का दरवाजा बंद हो गया। कितनी बड़ी नेमत है तौबा, कितनी बड़ी नेमत है। और हमारे जैसे लोगों के लिए जो गुनाहों से भरे हुए, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये गोल्डन चांस खत्म हो जाएगा, ये सब नेकियां कमाने के जरिए खत्म हो जाएंगे। आप यहां पे एक सलाम कह देते हैं, किसी को सलाम का जवाब दे देते हैं, इसके ऊपर आपको नेकियां मिल जाती हैं। आप किसी को मुस्कुरा के देख लेते हैं, उसके ऊपर आपको नेकियां मिल जाती हैं। वहां पे आप कितने ही सलामों के जवाब दें, आप कुछ भी कर ले, आपकी नेकी में एक भी इजाफा नहीं होगा। तो बताएं कितनी कीमती है ये जिंदगी, इसकी कदर पहचानो मेरी बहनों, इसकी कदर पहचानो, ये बहुत कीमती है। और इसकी कदर किस लिए करो, इसलिए नहीं कि यहां पे हमने कोई फन करना है, कोई मजे करने हैं, कोई कुछ करना है। इसकी कदर, इसकी तमन्ना इसलिए करो कि यहां पे हम नेकी कमा लें, यहां पे अपने गुनाह बख्शवा लें, यहां पे हम अपने इतने अमल जमा कर लें कि अपने रब के सामने खड़े होके कुछ तो पेश कर सके। तो ये बड़ी कीमती है, इसमें इसको बेकार चीजों में ना गवाएं। और कभी अपने लिए मौत ना मांगे, आपके मांगने से तो नहीं मौत आनी ना, इसने तो आ ही जाना है एक दिन। ये थोड़ी है हम कभी किसी परेशानी में होते हैं, कोई बीमारी या कोई तकलीफ या कोई रंज, कोई दुख ऐसा हो जाता है, अरे सुभान अल्लाह ये कितनी प्यारे दुख हैं कि इनसे भी गुनाह धुल जाते हैं। तो वहां के तो दुख कैसे हैं कि वहां जहन्नम की आग है या कब्र का अजाब है, उससे कुछ हो नहीं रहा, उससे आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा। इससे तो देखो सुभान अल्लाह, एक सुई भी चुभी, एक कांटा भी चुभा तो उससे भी गुनाह माफ हो गए, इतनी सी तकलीफ से भी गुनाह माफ हो गए। हाँ, उसके ऊपर सबर किया, उसके ऊपर अजर भी पा लिया। तो इन दुखों से, परेशानियों से घबरा के इंसान मौत कभी ना मांगे, बल्कि एक सूरत सिर्फ ऐसी है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज फरमाया, वो भी मौत मांगना नहीं जायज फरमाया, बल्कि ये फरमाया कि आप ये कह सकते हैं अल्लाह जब तक मेरा जिंदा रहना बेहतर है मेरे लिए, अल्लाह तब तक मुझे जिंदा रखना, जब मेरे लिए मौत बेहतर हो अल्लाह मुझे मौत दे देना। वो सिर्फ किस सूरत में, जब आपको ये खतरा हो कि अल्लाह मेरा ईमान ना चला जाए, ऐसे हालात कोई ऐसी बात हो गई है कि आपको ये खतरा पड़ गया अपने ईमान का, तो तब आप ये भी, तब भी ये नहीं कह सकते अल्लाह मुझे मौत दे दे, मैं तो मर ही जाऊं तो अच्छा है, आए मैं ना आई हूं इसे फलाने की बजाय मुझे मौत आ जाती, इस तरह की बातें मुंह से कभी ना निकालें। अब हम औरतों की तो आदत होती है, जरा सी कोई बात हो गई ना, बच्चों ने थोड़ा सा तंग ही कर लिया, जरा सी कोई किसी की तरफ से दुख मिल गया, बच्चों की तरफ से औलाद की तरफ से दुख मिल गया, कहते हैं हाय मैं तो मारी जाती, ना ही मेरी जिंदगी होती, मैं ना मैं ऐसे होती, साथ रोती हूँ और साथ ये बातें करती हैं। कितनी बुरी बात कह रहे हो, आप इसके लिए थोड़ी दुनिया में आए हो, अपनी ये इस चीज को पहचानो, आपका दुनिया में आने का मकसद क्या है, आपने इस दुनिया में अपने लिए आखरत बनानी है, आप इसलिए आए हो यहाँ पे, ये इसलिए आपको इम्तिहान यहाँ पे लिया जा रहा है कि इस इम्तिहान में आप अपने आप को प्रूव करें कि मैं जन्नत के काबिल हूं, लेकिन इस चीज की परवाह ही नहीं। तो कभी अपनी जिंदगी को फॉर ग्रांटेड ना लें, कभी इसको ऐसे इसकी नाकदरी ना करें, कभी इसको जाया ना करें, और कभी इसको ख़त्म करने का ना दुआ करें ना सोचें कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती हूँ। अल्लाह माफ़ करे, ख़ुदकुशी जो है वो हराम है, हराम मौत है। यंगस्टर्स में या लोगों में जो बहुत डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उनमें ख़ुदकुशी के ख्यालात ज़्यादा आते हैं। वो क्यों? इसलिए कि बस थोड़ी सी चीज़ों से घबरा गए तो बस खुद ख़त्म कर लिया अपने आप को। आपको पता है ये हराम मौत है, और जो ख़ुदकुशी करेगा जहन्नम के अंदर वो अपने आप को इसी तरह मारता रहेगा, और जहन्नम में होगा वो, क्योंकि ये आपकी आपकी चीज़ नहीं है ये ज़िंदगी। ये आप उसको जब चाहें, हम अपना असल में मसला ये है ना, हमने इसके ज़िंदगी के ऊपर कभी अल्लाह का हक़ समझा ही नहीं। हम तो अपना ही हक़ समझते हैं कि बस हमारी ज़िंदगी, हम जो मर्ज़ी करें, चाहे जिए तो चाहे मरें। नहीं, ये आपकी ज़िंदगी तो नहीं है, आपने अपने आप को ज़िंदगी दी है क्या? नहीं, अल्लाह ने दी है। जब जिसने दी है उसकी मर्जी जब मर्जी ले वापस, आपका तो नहीं इसके ऊपर हक है। आपने कब से अपना हक समझ लिया? तो आपने अपने आप को जिंदगी दी होती तो फिर हक समझते। आप मानते हैं ना कि अल्लाह ने जिंदगी दी है, तो वही इसका मालिक है। फिर जब चाहे इसको ले ले, जल्दी ले ले तब भी आप शिकायत ना करें, और देर से ले तब भी आप शिकायत ना करें। अपनी मर्जी ना चाहें कि मेरी मर्जी से बस मौत आए, नहीं, मेरे अल्लाह की जब मर्जी। तो ना तमन्ना करनी है, ना जिंदगी खत्म करने का कभी भी सोचना है। हमेशा जिंदगी के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए? इसी के जरिए मेरी नेकियां बढ़ सकती, इसी के जरिए मैं जन्नत कमा सकती हूँ, इसी के जरिए मैं अल्लाह को राजी कर सकती हूँ। वहां पहुंच के कोशिश करूंगी कि अल्लाह को राजी करूं, तो वहां पहुंच के तो फिरौन भी सज्दे में गिरना चाहेगा, वहां पर पहुंच के तो फिरौन भी अल्लाह को राजी करना चाहेगा, वहां पर तो अबू जहल भी चाहेगा कि ईमान ले आए। तो आपका कौन सा कारनामा फिर हो गया? असल बात तो यह, यहां पे अपने रब को राजी करो, ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी दोबारा। तो समझ लें, आपको एक ही चांस मिला है, जस्ट वन चांस। क्या आप उस चांस को गंवाना चाहेंगे? वलतजिदन्नहुम अहरसन्नासी अला हयातिन, और अलबत्ता तुम जरूर हरीस तरीन पाओगे लोगों में से जिंदगी के ऊपर। इनको, इन लोगों को आप जिंदगी का ज्यादा हरीस पाएंगे या नबी। यहूद जो हैं, आप अगर इनको कहें मौत की तमन्ना करो, कभी भी नहीं तमन्ना करेंगे, क्योंकि इनको भी पता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया हुआ आगे के लिए। अब हमें भी देख लें, हम वैसे जितने मर्जी दावा करते रहे, लेकिन अगर कहेंगे मौत की तमन्ना करो तो हमें पता है कि हमने कुछ भी नहीं किया हुआ। डरते हैं भाई हम मरने से, कोई किसी को बता दे या जाए अगर कि भाई अल्लाह माफ़ करे, कोई ये आपको ये बीमारी हो गई है जिसका जिसमें आपने बस इतने दिन ही आप रह सकती हैं, इस तरह से कोई बात कह दी जाए, किसी को कैंसर का कह दिया जाए, फिर देखिए हमारी हालत क्या हो जाती है। क्या हालत हो जाती, कैसे रोने धोने हमारे मच जाते हैं कि हाय अब हमें जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि हमने तो आगे के लिए कुछ भेजा ही नहीं। जब आगे के लिए कुछ नहीं भेजा तो फिर जाहिर सी बात है, फिर आगे जाना कौन चाहेगा? जिसको वहां पे यकीन है अल्लाह की रहमत का, कि मेरे लिए अल्लाह की रहमत शामिल हाल होगी, उसके लिए तो दिन दुनिया का दिन दुनिया में रहना तो कैद खाने की तरह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, दुनिया तो मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। अब हमने जो दुनिया को जन्नत बनाया हुआ, तो अब हम जन्नत से भी रुदर कैसे जाएं वीराने की तरफ? अगर हमारी जिंदगी कैद खाना होती ना यहाँ पे, कि हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्शन में बांधा हुआ है, अल्लाह की फरमा बरदारी में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर तो हमने कहना था कि बस मेरी रब से कब मुलाकात हो, मैंने उसके लिए आज तक तैयारी की है, उसके लिए खुद को बांध बांध के रखा है, उसके लिए कुर्बानियां दी, उसके लिए रातों को जागी, उसके लिए दिन को भूखी रही, फिर तो अच्छे उसके अंदर हमें वो होना चाहिए। लेकिन हमें पता चल जाए तो हमारी हालत क्या होती है, दावे हम जो भी करें अपनी नेकी पारसाई के, तो खाली हाथ हैं। हमने अपनी कोई कमाई करनी है, ठीक है, कि हमें मौत से फिर डर ना लगे। तो तुम ए नबी इनको सबसे ज्यादा हरीस पाओगे जिंदगी का, कि ये तो कभी भी मौत अपने लिए चाहते ही नहीं है। उनको तो ये हर वक्त ये हिर्स लगी है, फिक्र लगी है कि हम और ज्यादा जी लें, और ज्यादा जी लें, वैसे जन्नत के दावेदार बनते हैं। तो इनकी हेयर से इसलिए है कि आगे नहीं कुछ भेजा हुआ। वह मिन अल्लदीना अशरकू, और दुनिया में इन्होंने दिल बहुत लगाया ना, और वह मिन अल्लदीना अशरकू। अच्छा, यहां तक अगर हम इसको पॉज करें तो फिर इनकी जिंदगी के ऊपर हिर्स मुशरिकीन से भी ज्यादा है। यानी मुशरिक तो शिर्क करने वाले, वो तो अल्लाह को मानते ही नहीं, अल्लाह अकबर, उनकी तो हिर्स है ही जिंदगी पे, लेकिन इनकी तो उनसे भी ज्यादा है। ये तो कभी जाना ही नहीं चाहते यहाँ से, दिल जो अटका हुआ यहीं पे दुनिया में। जो पहले हमने एक दफ़ा बात की थी ना कि वो ने पूछा था खलीफा ने एक ताबई से कि क्या मौत से क्यों डर लगता है, तो उन्होंने क्या फरमाया था कि तुमने अपनी दुनिया को आबाद किया हुआ और अपनी आखरत को वीरान किया हुआ, तो अब आबादी से वीराने में जाते हुए डर लगता है। अगर हमने अपनी दुनिया को वीरान किया होता और आखरत को आबाद किया तो फिर ना डर लगता। तो इसलिए ये तो इतने हरीस हैं दुनिया के, दुनिया में रहने के मुशरिकीन से भी ज्यादा। अच्छा, मोमिन के लिए दुनिया में जिंदगी की हिर्स होनी चाहिए कि नहीं? क्या जिंदगी की हिर्स होनी चाहिए या मौत की ख्वाहिश होनी चाहिए? अभी तो हमने आप बात करें कि मौत की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, तो फिर क्या होना चाहिए? जिंदगी की हिर्स भी कहा गया कि उनको जिंदगी की हिर्स है, तो फिर अब कंफ्यूजन हो जाएगी कि फिर हमें होना क्या चाहिए। यानी क्या अपने लिए जिंदगी मांगनी चाहिए या फिर मौत की तमन्ना रखनी चाहिए? वो भी नहीं रखनी, तो फिर जिंदगी की हिर्स भी अच्छी नहीं है, तो क्या किया जाए? फिर बात यह है कि जिंदगी की तमन्ना इतनी हो, जिंदगी की ख्वाहिश सिर्फ इसलिए हो कि उसमें नेक आमाल कर सको, बस। समझ आई? ऐसी होनी चाहिए। इसलिए क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मौत की ख्वाहिश ना करे, ना मौत आने से पहले इसकी दुआ मांगे, क्योंकि जब तुम में से कोई आदमी फौत हो जाता है तो उसके आमाल मुनकते हो जाते हैं, यानी कट हो जाते हैं, बंद हो जाती है उसकी बुक। और मोमिन की उम्र तो भलाई ही के लिए ज्यादा होती है, यानी नेकी के लिए ज्यादा होती है। मुस्लिम की हदीस है, यानी जिंदगी ज्यादा लेने का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है? क्या कॉन्सेप्ट होगा कि मुझे जिंदगी ज्यादा मिले, इसके पीछे क्या होना चाहिए एक मोमिन के लिए? फन करना है, बच्चों की शादियां करनी है और कमाइयां करनी है, बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाना है? नहीं, ज्यादा नेकी पाने के लिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा जमा कर लूं और नेकी जमा कर लूं और नेकी जमा कर लूं। क्योंकि एक बद्दू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने पूछा, लोगों में सबसे बेहतर कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी उम्र लंबी हो और उसका अमल नेक हो। यानी जिसको अपनी इतनी लंबी उम्र मिल जाए और वो उसमें नेकियां करता जाए, वो सबसे बेहतर है। तो ये उम्र जो है ना, मर्जियां पूरी करने के लिए नहीं मिली, ये उम्र जो है ना, फन करने के लिए नहीं मिली। ये उम्र किस लिए मिली है? कि इंसान नेकी बढ़ाए। लेकिन इन लोगों का क्या हाल है? ये हरीस हैं दुनिया के, इसलिए कि बस यहीं रहना चाहते, इसको छोड़ के नहीं जाना चाहते। इसीलिए आप देखें, ये लोग ना अपनी लाशों को भी प्रिजर्व करवाने के लिए लाखों खर्च करते हैं। क्रायोनिक्स कहते हैं शायद उसको, कि जो प्रिजर्वेशन का इनका प्रोसेस होता है। कहते हैं कि एक दिन ना हम उठ जाएंगे दोबारा, ना हम उठ जाएंगे जब दोबारा कोई ऐसा कोई रिसर्च होगी कि मुर्दों को जिंदा करने की। इंसान तरक्की तो करता जा रहा है, इल्म में आगे आगे पहुंचता जा रहा है, तो कभी ना कभी कोई रिसर्चें ऐसी होंगी कि भाई मुर्दे भी जिंदा हो जाए, तो जब वो रिसर्च वगैरह हो जाए ना, तो फिर हमें उठा के बिठा देना, तो तब तक हमें प्रिजर्व करके लिटा। तो उसको प्रिजर्वेशन के लिए क्या क्या करते हैं आप इसके ऊपर सर्च करके देख सकते हैं। इतने यानी ये हरीस हैं कि हम मरे ना, बस यहाँ से जाए ना। इनमें से एक एक ये चाहता है कि काश वो हजार साल तक जिए, इतनी इनकी ख्वाहिश है। हजार हजार साल की हमें जिंदगी मिली, जी भरता ही नहीं है इनका दुनिया से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए भी पता है क्या फरमाया था? मुसलमानों में भी ऐसी हिर्स आ जाएगी, बस कि हम बस जिंदा रहें, जिंदगी मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक वक्त आएगा कि दुनिया की कौमें तुम पर एक दूसरे को ऐसे दावत देंगी जैसे खाने में दावत दी जाती है। अरे को बुलाया जाता है ना, खाना सामने रख दिया जाता है, तो कहने वाले कहते हैं आओ आओ, तुम भी आके शामिल हो जा। तो किसी ने कहा, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी कि गैर कौमें हमें हमारे ऊपर इस तरह दावा देंगी, यानी हमें नोचने के लिए, हमें भंबोड़ने के लिए मुसलमानों को गैर कौमें एक दूसरे को दावत देंगे कि लूट लो इनको, खा लो इनको। तो वो साहबी ने पूछा, क्या उस वक्त हम इतने कम होंगे, यानी वो हम पे ऐसे गालिब हो जाएंगे? फरमाया, नहीं, बल्कि उस वक्त तो तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी तुम्हारी तादाद, मगर तुम्हारी हालत ऐसी होगी जैसे झाड़ सैलाब पे होती है। झाड़ वो तिनके नहीं होते, सैलाब का पानी जा रहा होता ऊपर खसोखा शाख होते, उस तरह तुम्हारी हालत होगी। और अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन के दिलों से तुम्हारे रोब को निकाल देगा, तुम्हारी हैबत निकल जाएगी दुश्मनों के दिलों से, और तुम्हारे दिलों में वहन पैदा कर देगा। वहन क्या होता है? पूछा गया, ये वहन क्या चीज है? फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ। जब किसी मुसलमान कौम का ये हाल हो जाए ना, उसका रोब ही खत्म हो जाता है, फिर सारे लुकमा तर बनाते हैं कि आ जाओ इनको खा लो। नहीं, ऐसे हैं दुनिया से चिपके हुए कि हमें कहीं मौत ना आ जाए, यही आज हमारी हालत है। अल्लाहु अकबर। हालांकि मुसलमान जो मोमिन है, ठीक है, मौत की तमन्ना नहीं, लेकिन जो मोमिन है, आप खुद सोचे कि उसके लिए तो अल्लाह ताला से मुलाकात का जरिया है मौत। उसके लिए तो ये हाल है कि यानी वो तो ना डर होता है कि जो वक्त अल्लाह ने मेरे लिए मुकर्रर कर दिया है उसी वक्त में आनी है, उससे पहले नहीं आएगी, वो ना डर रहता है। और ये देख लें, ये 1000 साल भी क्या, अगर 1000 साल की जिंदगी मिल भी जाए तो भी क्या, कई लोगों को इतनी इतनी लंबी उम्रें मिलती हैं, उसके बावजूद उनका कोई अमल नहीं होता। तो 1000 साल की जिंदगी भी, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा हुआ भी मुजहजिही मिनल आदा भी अयु अमरा, ये लंबी उम्र उनको अजाब से बचाने वाली नहीं है, इनको नुकसान से नहीं बचा सकती ये अल्लाह के अजाब जो जहन्नुम है उससे। चाहे 1000 साल भी जी लेंगे, फिर भी अगर अंजाम क्या है आखरत का अजाब, तो इन इस 1000 साल की जिंदगी की क्या फायदा, इससे तो नहीं अजाब टलेगा यहाँ पे। यहाँ तो होना कि दुनिया में 1000 साल रह के फिर उसके बाद यहीं पे रहना हो तो फिर भी बात समझ आती है, अगर 1000 साल भी रह के फिर उसके बाद अजाब ही है तो क्या फायदा इस 1000 साल की जिंदगी का। दुनिया के 1000 साल भी आखरत के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे 1 सेकंड। अगर आपको कहूँ मैं, चलें अब इन्फिनिट लाइफ को तो हम ज़ाहिर है कुछ भी फिगर्स नहीं दे सकते, कोई नंबर नहीं दे सकते, लेकिन चलो आखरत की ज़िंदगी को अगर हम कहें 1000 सदियाँ, 1000 सेंचुरीज, तो 1000 सेंचुरीज के मुकाबले में जो 1 सेकंड, 1 सेकंड गुजरा है ना, ये 1 सेकंड गुजर गया, ठीक है, ये दुनिया की ज़िंदगी है, और 1000 सेंचुरीज कितनी ही लंबी होती हैं। 1400 साल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजरे हुए हो गए, हैं तकरीबन 2000 साल ईसा अलैहि सलाम को गुजरे हुए हो गए। 1000 सेंचुरीज कितनी लंबी होंगी, 1000 साल, 1100 साल। तो सोचें कि आखरत दुनिया के मुकाबले में इतनी लंबी है, 1 सेकंड की क्या कदरों कीमत होगी। या जैसे एक कतरा समंदर के अंदर हो, ऐसे ये दुनिया और समंदर आखरत समझ लें। तो कितने भी 1000 साल की जिंदगी मिल भी जाए, अगर एक इंसान जिंदगी से फायदा नहीं उठाता ना, तो वो 1000 साल भी किसी काम के नहीं है। और अगर किसी को थोड़े साल भी मिल जाए लेकिन वो अपनी जिंदगी से फायदा उठा ले तो वो बहुत बेहतर है। आप देखें, हमारे असलाफ जो थे वो अपनी जिंदगियां ज़ाया नहीं करते थे, वो जिनको छोटी उम्र में मिली, उन्होंने, आप कई लोगों के बारे में सुनते हैं ना कि फ्रॉम रिवर्टेड मुस्लिम 30 साल 40 साल की उम्र में वो इस्लाम लेकर आए, फिर वो फलानी जगह गए, फिर उन्होंने वहाँ पढ़ा, 60 साल की उम्र में फौत भी हो गए, लेकिन उन्होंने इतना काम किया, इतनी कोई किताबें लिखी, इतना ऐसे किया, कई लोगों के बारे में पता चलता है। आप देखें जो अल्लामा इब्ने जरीर है, बहुत बड़े आलिम थे, उनकी तफसीर तबरी है, बहुत मशहूर है, 40 साल तक बराबर रोज़ाना 40 पेजेस लिखा करते थे। सोचें, तो हिस्ट्री की उन्होंने 14,000 सफ़ों के ऊपर किताब लिखी है। इसके अलावा भी बहुत सारी और किताबें लिखी, और उस वक़्त हाथों से लिखते थे, कोई प्रिंटिंग नहीं थी। तो आप देखेंगे कई लोग छोटी उम्र में भी बहुत कुछ कर जाते हैं, और निकम्मे लोग 100-100 साल भी जीते हैं, तो कहते हैं लंबी उम्र हो जाए, लंबी हो जाए, जिंदगी पा के भी कुछ नहीं कर पाते। तो ये लंबी उम्र इंसान को बचा नहीं सकती, याद रखो। अल्लाह अकबर, ये किसी को अजाब से बचा नहीं सकेंगी अगर इनको 1,000 साल भी मिल जाए। वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून, अल्लाह देखने वाला उसको जो वो अमल करते हैं, अल्लाह ताला को सब पता है जो ये अमल कर रहे हैं, उसके सामने कोई चीज़ छुपी भी नहीं है। यहाँ तक तिलावत सुनिए, फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह।
ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من وما هو بمزحزحه من العذاب